मेरे आत्मीय मित्रों नमस्कार। आज 15 मार्च 2018 है और आज के इस डेली ऑडियो लेक्चर में मैं डॉक्टर विजय अग्रवाल आप सभी का हार्दिक रूप से स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज के इस डेली ऑडियो लेक्चर के लिए मैंने सिविल सोसाइटी सब्जेक्ट को चुना है। सिविल सोसाइटी को चुनने का मेरा जो पर्पस है मित्रों, बहुत साफ है और बहुत सरल और सहज भी है। सामान्यतया ये तो आपके सिलेबस में ये ऑलरेडी है और अगर आप अनसॉल्व पेपर उठा करके देखेंगे तो इससे प्रश्न भी पूछे जाते हैं। ये बात अच्छी है कि इससे उस तरीके के जटिल प्रश्न नहीं पूछे जाते जितने जटिल प्रश्न और दूसरे सेक्टर से बनते हैं। एक इसके साथ अच्छी बात है, लेकिन मुझे लगता है कि मान लीजिए जैसे खाप पंचायत पर आप देखिए प्रश्न पूछे गए हैं। खाप पंचायत जो हरियाणा और पश्चिम उत्तर प्रदेश में काफी स्ट्रांग भी हैं और अक्सर उनकी खबरें अखबारों में छपती भी हैं और क्वेश्चन भी सीधे सीधे पूछे गए हैं। हालांकि जो क्वेश्चन पूछे गए हैं उनका संबंध उन्होंने संविधान से जोड़ा है, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि उनका संबंध सिविल सोसाइटी से भी तो जोड़ा जा सकता है। तो यदि सिविल सोसाइटी से जोड़ करके कोई प्रश्न पूछ लिया जाता है, चाहे खाप पंचायत पर या यूं कह लीजिए कि सिविल सोसाइटी का ही एक रूप खाप पंचायत है, अगर इस तरह का प्रश्न पूछ लिया जाता है तो आप उसे कैसे सॉल्व करेंगे? क्योंकि मित्रों, जहां तक किताबों का सवाल है, मुझे तो कम से कम कोई ऐसा अभी तक ऐसी किताब नहीं मिली जिसमें खाप पंचायत, सिविल सोसाइटी, इन सब के अंतर के बारे में स्पष्ट किया गया हो, बताया गया हो। और मुझे तो ऐसा भी लगता है, सच पूछे तो इसकी जरूरत भी क्या है। देखिए, आप ग्रेजुएट हैं, आप सिविल सर्विस की तैयारी कर रहे हैं, आप किताबें पढ़ रहे हैं, लगातार अखबारों से, मैगजीन से, न्यूज से जुड़े हुए हैं, तो आपके अंदर इतनी कैपेसिटी आ जानी चाहिए या कह लीजिए वह दृष्टि आ जानी चाहिए कि आप खुद ये बता सकें कि वास्तव में खाप पंचायत और सिविल सोसाइटी में अंतर क्या है। तो मित्रों, इन थोड़ी सी जटिलताओं को भी ध्यान में रखते हुए मुझे लगा कि हालांकि टॉपिक सरल है, लेकिन फिर भी इसकी एक एकेडमिक तरीके से थोड़ी सी बातचीत होनी चाहिए। यह निबंध के लिए भी एक बहुत अच्छा विषय है। नो डाउट कि आपके सेकेंड पेपर जो जनरल स्टडीज का है, मेंस का, उसके लिए तो है ही। और फिर मुझे ये भी लगता है कि जो डेमोक्रेसी से रिलेटेड यदि कोई प्रश्न पूछा जाता है या यूं कह लीजिए कि भारतीय व्यवस्था में सुधार के बारे में कोई प्रश्न पूछा जाता है, चाहे वो एडमिनिस्ट्रेशन ही क्यों ना हो, तो सिविल सोसाइटी एक पॉइंट उसमें बनता है। यदि आपके पास सिविल सोसाइटी की अच्छी समझ है तो आप अपने मौलिक विचार के रूप में सिविल सोसाइटी की भूमिका या उसके कंट्रीब्यूशन का उल्लेख उसमें कर सकते हैं। लेकिन मित्रों, ऐसा तभी होगा जब आप सिविल सोसाइटी के बारे में अच्छे तरीके से जानते हों। तो आइए अब हम सिविल सोसाइटी पर थोड़ी सी बात कर लेते हैं। फ्रेंड्स, इसमें दो शब्द हैं, सिविल सोसाइटी। हालांकि इसका हिंदी अनुवाद भी अब मिलने लगा है और उसको कहा जाता है नागरिक समाज। अब आप देखिए कि जब नागरिक समाज आप पढ़ते, सोसाइटी की जगह समाज उन्होंने दे दिया, समिति नहीं दिया, नागरिक समिति नहीं है। देखिए, जनरली सोसाइटी का जो अनुवाद किया जाता है वो समिति किया जाता है, लेकिन ये नागरिक समाज है, याद रखिए, समिति नहीं है, नागरिक समाज। इंग्लिश ज्यादा सही शब्द है। अब आप देखिए कि सिविल जब हम कहते हैं और जब नागरिक कहते हैं तो उनमें थोड़ा सा फर्क हो जाता है। देखिए, देश में रहने वाला हर व्यक्ति उस देश का नागरिक है, ठीक है, लेकिन जब हम सिविल कहते हैं तो सिविल में थोड़ा सा सेंस इस तरीके का आ जाता है कि वह जो नागरिक है वह सतर्क है, सुचिंतित है, सुविचारित है, यानी यूं कह लीजिए कि पढ़ा लिखा है। इस तरह की भावना सिविल शब्द से जुड़ी हुई है। जैसे अभी भी आप कहीं शहरों में चले जाइए, जो थोड़े से पुराने शहर रहे हैं और डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर रहे हैं, वहां आपको एक सिविल लाइन मिलेगी। सिविल लाइन, खासकर जब अंग्रेज भारत में आए तो उन्होंने एक अपने अलग से कॉलोनीज जैसी बनाई जिसमें कि अंग्रेज अधिकारी रहते थे और भारतीय अधिकारी भी जो थोड़े से अच्छे होते थे वो उस सिविल लाइन्स में रहते थे। तो सिविल लाइन्स का मतलब ही था जहां उच्च अधिकारी रहते हो। तो अब उस सेंस में सिविल को देखिए, इसका मतलब ये हुआ कि एक पढ़ा लिखा वर्ग, उस देश का नागरिक है लेकिन वो पढ़ा लिखा वर्ग है। फिर है समाज। समाज शास्त्रीय दृष्टि से या समाज शास्त्र की किताब में जब आप समाज को देखेंगे तो वो सीधी सी बात है कि या तो संपूर्ण समाज, एक पूरे के पूरे लोग जो है वो समाज के हिस्से हैं, या फिर है कि कम्युनिटी पर बेस्ड समाज, जाति पर बेस्ड समाज, वो एक अलग बात है। लेकिन अगर हम व्यापक रूप में लें तो सीधी सी बात है कि जो भी व्यक्ति वहां रह रहे हैं वो उस समाज के हिस्से हैं। तो समाज एक व्यापक अर्थ देता है मित्रों, और नागरिकता भी एक व्यापक अर्थ देता है, इसमें स्पेसिफिक कुछ नहीं है। यहां आपको थोड़ा सा ध्यान ये रखना है कि जब हम सिविल सोसाइटी की बात करते हैं तो सिविल सोसाइटी बेसिकली उस व्यापक अर्थ में नहीं है जिस व्यापक अर्थ में नागरिकता और समाज है। यह एक छोटा समूह बन जाता है, और छोटा समूह कौन सी चीज है जो इसको छोटा समूह बना रही है? सतर्कता, आप यूं कह लीजिए कि एक पढ़ा लिखा होना, शिक्षित होना, अलर्ट होना, ये उसे थोड़ा सा अलग बना देती है। यानी कि जो सिविल सोसाइटी है एक प्रकार से थोड़े से चिंतनशील लोगों का समूह है, चिंतनशील लोगों का समूह। अब आप देखें कि जब हम चिंतनशील लोगों का समूह कहते हैं तो फिर वो दूसरे समूहों से किस तरीके से अलग हो जाता है। आप इस रूप में, फ्रेंड्स अच्छा शब्द है, कह सकते हैं कि ये हमारे समाज का एक थिंक टैंक है। ये शब्द आजकल खूब चला हुआ है, थिंक टैंक, यानी कि एक ऐसा ग्रुप जो समस्याओं पर विचार करता है, किसी मामले पर विचार करता है, सजेशन देता है अपने, थिंक टैंक। आपको आजकल शहरों में ये खूब मिल जाएंगे थिंक टैंक। देखिए सरकार के भी थिंक टैंक होते हैं, यहां तक कि जो बड़ी बड़ी पॉलिटिकल पार्टीज हैं उनके भी थिंक टैंक होते हैं, जो अलग अलग दो चार पांच लोगों का समूह होता है, वो अलग अलग मुद्दों पर सोच विचार करके सरकार को राय दिया करता है। सब चीजें हालांकि इनफॉर्मल होती हैं, ये नहीं कि वो गवर्नमेंट के ऑफिसर्स हैं और उनको सैलरी मिल रही है, उनका कोई पदनाम है, नहीं, वो एक समूह बना हुआ है, या कह लीजिए उन्होंने एक संगठन बनाया हुआ है और उसके माध्यम से वो ये काम करते हैं। तो मेरी समझ से बहुत अच्छा शब्द है सिविल सोसाइटी के चरित्र को व्यक्त करने के लिए, थिंक टैंक, यानी कि समाज का, समाज के बारे में विचार करने वाला एक समूह, राइट। अब आप देखें कि अगर हम फिर से व्यापक अर्थ लें मित्रों, तो इस सिविल सोसाइटी में सब कुछ आ जाएगा, गवर्नमेंट को छोड़कर के, याद रखिए गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन इसमें नहीं आएंगे, नॉन गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन हो, इस हिसाब से सभी एनजीओ सिविल सोसाइटी में आ जाएंगे, जो संस्थान है इस तरह के जो काम कर रहे हैं वो आ जाएंगे, यानी कि ऐसे संस्थान जो कहीं न कहीं जो नागरिकों की जो आकांक्षाएं हैं, नागरिकों की जो इच्छाएं हैं उनको व्यक्त करते हैं। और देखिए जब हम कहते हैं कि नागरिकों की आकांक्षाओं को व्यक्त करते हैं तो किसके सामने व्यक्त करते हैं? एक दूसरे के सामने नहीं, एक समूह दूसरे समूह के सामने आपस में ही व्यक्त नहीं कर रहा है, ये जो व्यक्त कर रहा है ये गवर्नमेंट के सामने व्यक्त कर रहा है, मतलब जो एस्टेब्लिशमेंट है, चाहे वो गवर्नमेंट है चाहे डिस्ट्रिक्ट लेवल पर प्रशासन ही है, उनके सामने वह समूह इस तथ्य को व्यक्त कर रहा है कि भाई हमारे लोग क्या चाहते हैं। जैसे मान लीजिए कि आप एक आपका जिला है, उस जिले में एक सिविल सोसाइटी है, मतलब कुछ पढ़े लिखे लोग, रिटायर्ड लोग, लोगों ने एक ग्रुप बना लिया है और जो अपने शहर की समस्याओं पर समय समय पर सरकार को बताते रहते, यानी कि डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन को बताते रहते, कलेक्टर को बताते रहते हैं। उनको लग रहा है कि हमारे शहर में ट्रैफिक की हालत बहुत ज्यादा खराब हो गई है, ट्रैफिक जाम होता है, प्रदूषण बहुत हो रहा है, एक्सीडेंट बहुत हो रहे हैं, तो अब उस पर वो आपस में विचार करेंगे, बातचीत करेंगे और सरकार को एक मेमोरेंडम जैसा दे देंगे कि भाई ये संकट आ रहा है, इस संकट का ये समाधान हो सकता है, ये किया जाना चाहिए। तो सरकार उन पर विचार करेगी, उसके लिए संभव होता है तो वो उसे स्वीकार करके उस पर एक्शन लेना शुरू कर देती है, नहीं तो अपना ठंडे बस्ते में डाल देती है, फिर सिविल सोसाइटीज एक्टिव होती हैं और फिर से उस मामले को आगे बढ़ाती है। तो इस तरह से जो मैनिफेस्ट कर रहे हैं, जो अभिव्यक्त कर रहे हैं, वो अथॉरिटी के सामने कर रहे हैं ताकि कुछ परिवर्तन हो सके। तो इस रूप में मित्रों जो सिविल सोसाइटी है, देखिए नॉन गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशंस हो जाते हैं, उसमें इंस्टीट्यूशंस हो जाते हैं, यहां तक कि उसमें परिवार भी शामिल हो जाते हैं, परिवार को भी आप एक तरीके से सिविल सोसाइटी कह सकते हैं। और मित्रों अब तो धीरे 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 ये इतनी शक्तिशाली होती जा रही है सिविल सोसाइटीज की, इसे थर्ड सेक्टर कहा जाने लगा, याद रखिए थर्ड सेक्टर। तो आपके मन में आ रहा होगा कि यार अगर ये थर्ड सेक्टर है, सिविल सोसाइटी थर्ड सेक्टर है, तो फर्स्ट और सेकेंड सेक्टर कौन से हैं? तो मित्रों जो फर्स्ट सेक्टर होती है वो है गवर्नमेंट, सरकार, और जो दूसरा सेक्टर होता है वो होता है व्यापार, बिजनेस, इकोनॉमिक एक्टिविटीज, और थर्ड सेक्टर में सिविल सोसाइटीज आती है। तो इसे आप समझ सकते हैं कि सिविल सोसाइटीज कितनी ज्यादा अहमियत हमारे आज के समाज में रखते हैं। दोस्तों, इसके थोड़े से मैं आपको बैकग्राउंड की तरफ ले जाना चाहूंगा, उससे आपको चीजें और स्पष्ट होंगी। मुझे लगता है कि स्पष्टता बहुत जरूरी है। आपने पॉलिटिकल साइंस में अरस्तु वगैरह के बारे में पढ़ा होगा, अरस्तु, प्लेटो, इन सब के बारे में हमारे फिलोसफर रहे हैं, मतलब ग्रीक फिलोसफर रहे हैं। तो जो ग्रीक उस समय था, यूनान एक छोटा सा देश था और एथेंस उसकी राजधानी थी, तो एथेंस तो बहुत ही छोटा सा, मतलब प्लेटो अरस्तु के समय में उसकी जो आबादी थी वो कुल 5000 के आसपास बताई जाती। सोचिए कि 5000, और वो एक देश था, अपने आप में वो एक राष्ट्र था। उस राष्ट्र को मालूम है क्या कहा जाता है? उस राष्ट्र को कहा जाता है सिटी स्टेट, नगर राज्य। सिटी स्टेट का मतलब है कि वो अपने आप में पूरा एक राज्य, मतलब देश है, कंट्री है। राज्य के नाम से तो फिर आप मध्य प्रदेश और उड़ीसा राज्य जैसा समझ लेंगे। वो अपने आप में एक कंट्री है, लेकिन एक शहर है, मतलब शहर ही अपने आप में पूरा का पूरा राष्ट्र है। जैसे आज कह लीजिए आप वेटिकन सिटी, या सिंगापुर को ही देख लीजिए। सिंगापुर तो बेसिकली एक छोटा सा शहर ही है, थोड़ा सा बड़ा शहर कह लीजिए, छोटा सा नहीं कहना चाहिए, लेकिन वो अपने आप में नेशन भी है। तो सिटी स्टेट था उस समय। तो सिटी स्टेट के तहत बेसिकली अरस्तु ने और प्लेटो ने जो अपना सिद्धांत दिया था वो यही दिया था कि भाई इस सिटी के, इस नगर के जो नागरिक हैं वो नागरिक अच्छे अच्छे लोगों को चुन करके राज्य में भेजें और वो फिर राज्य अपना वो लोग चलाएं। तो डेमोक्रेसी को उन्होंने इस तरीके से रिफ्लेक्ट किया था अपनी तरफ से कि कुछ लोग चुने जाएंगे जो पढ़े लिखे अच्छे समझदार लोग होंगे और फिर वे कॉमन गुड के लिए, सार्वजनिक हित के लिए काम करेंगे। मित्रों, अब यहां एक शब्द आ गया, सार्वजनिक हित। याद रखिए कि जो सिविल सोसाइटी होती है वो सार्वजनिक हित के लिए काम करती है, व्यक्तिगत हित के लिए नहीं। और चूंकि ये पढ़े लिखे लोगों का समूह होता है तो इसलिए इनसे ये उम्मीद की जाती है कि ये बाकायदे प्रोग्रेसिव विचारों के होंगे, मतलब प्रतिक्रियावादी विचारों के नहीं होंगे। ये नहीं कि ये फिर मध्यकाल को वापस लाने की कोशिश कर रहे हैं। जैसे अभी मैंने खाप पंचायत की बात की, तो खाप पंचायत क्या कर रहे हैं? खाप पंचायत एक तरीके से जो हमारे मध्यकालीन जीवन मूल्य रहे हैं या प्राचीन रहे हैं उनको लाने की कोशिश कर रही है। उनमें आपको कहीं वो प्रगतिशीलता दिखाई नहीं देगी, वो आगे का नहीं देख रहे हैं, वो पीछे को पकड़ करके चल रहे हैं। और जो वो एक्शन ले रहे हैं, खाप पंचायत जो एक्शन ले रहे हैं, देखिए तो वो एक्शन किस तरीके का एक्शन है? वो हिंसात्मक एक्शन है, वो दंडात्मक एक्शन है, दंड देने वाला काम करते हैं, राइट? मतलब समाज को एक तरह से जकड़ने का काम कर रहे हैं। सिविल सोसाइटी तो उसको फ्रीडम देने का काम करती है, उसको और फ्री बनाने का काम करती है, वो उसके हित में काम करती है। और याद रखिए इसी मायने में ये एनजीओ से भी अलग है। जो नॉन गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन है, मोटे तौर पर आप कह सकते हैं कि ये भी सिविल सोसाइटी है मोटे तौर पर। लेकिन जब अंतर की बात आएगी तो मित्रों अंतर यहां हो जाएगा। अंतर यह होगा कि जो एनजीओ है, देखिए वो सर्विसेज ओरिएंटेड है, वो सेवा का काम करते हैं, है ना? कहीं स्वच्छता का काम हो रहा है तो कहीं पर्यावरण का काम हो रहा है तो कहीं अंधविश्वास को दूर करने का काम हो रहा है, इस तरीके से वो काम करेंगे। कहीं कुपोषण दूर करने का काम हो रहा है, इस तरह का काम एनजीओ करते हैं। लेकिन जो सिविल सोसाइटी है, सिविल सोसाइटी मूलतः एक वैचारिक आप कह लीजिए कि तथ्य उपलब्ध कराती है, विचारों के स्तर पर काम करती है। इसीलिए मैंने कहा कि ये एक थिंक टैंक होता है, समाज का थिंक टैंक होता है। और ये जो समाज का इस तरह का थिंक टैंक होता है मित्रों, जो नागरिक और सरकार इन दोनों को जोड़ने का काम करती है, दोनों के बीच मध्यस्थता का काम करती है, सरकार को भी सपोर्ट करती है। याद रखिए ये सरकार विरोधी नहीं होती है। लोगों के दिमाग में ये आ जाता है कि भाई ये सरकार विरोधी होगी, इसके लिए हमारे पास शब्द है, वह एक्टिविस्ट। एक्टिविस्ट आप जानते हैं, है ना, जो आंदोलन करते हैं और सरकार को, सरकार के विरोध में प्रदर्शन करते हैं और खड़े होते हैं, लोगों को जुटाते हैं, धरना देते हैं, एक्टिविस्ट। जो एक्टिव है, कुछ जरूरत से ज्यादा ही एक्टिव है, जैसे कि न्यायालय को कह दिया जाता है न्यायिक सक्रियता, तो उसी तरह की सक्रियता वो अपने लेवल पर दिखाते हैं और वो किसी भी फील्ड में काम कर सकते हैं। तो ये जो सिविल सोसाइटीज होती है, बेसिकली इनका काम कोई सरकार का विरोध करना नहीं होता, लेकिन सरकार पर प्रतिबंध लगाना जरूर होता है, या कह लीजिए प्रतिबंध भी नहीं, कहे कि सरकार की निगरानी करना जरूर होता है। अगर सरकार कुछ गलत कर रही है तो उससे भी वो सरकार को अवगत कराते हैं। तो ये नहीं कि वो सरकार जो चाहे वो करती रहे और सिविल सोसाइटी उनकी पिछलग्गू बनी रहेगी, नॉट एट ऑल। फिर तो आप सिविल एक तरीके से एक जागरूक नागरिक है ही नहीं। जागरूक नागरिक तो उनको रोकेगा ना, जहां गलत होगा वहां रोकेगा। तो ये जहां गलत होता है वहां बकायदे रोकने का काम करती है। और इसकी जो सबसे बड़ी भूमिका है मित्रों, इस पर आप अलग से भी सोचिएगा, अलग से एक प्रश्न भी बनता है कि ये एक प्रकार से सोशल कैपिटल का निर्माण करती है, सोशल सामाजिक पूंजी। अब आप कहेंगे कि सामाजिक पूंजी क्या होती है, आर्थिक पूंजी तो आपने अक्सर मतलब सुनते ही रहते हैं, लेकिन शायद सामाजिक पूंजी बहुत कम बार आपको सुनने को मिलता होगा। सोसाइटी की भी दोस्तों अपनी कैपिटल होती है। सोसाइटी की कैपिटल क्या होती है? सोसाइटी की कैपिटल बिल्डिंग नहीं होती है, है ना? सोसाइटी की कैपिटल चेयर्स नहीं होती है, जमीन नहीं होती है। जो सोसाइटी की कैपिटल्स होती है वो होती है सोसाइटी में रहने वाले लोगों के जीवन मूल्य, उनके वैल्यूज, जिनसे सोसाइटी बनती है। तो सोसाइटी किन जीवन मूल्यों से बनती है? सोसाइटी बनती है आपसी विश्वास से, कोऑपरेशन से, सहयोग से, समझदारी से। इन सबसे सोसाइटी का निर्माण होता है। तो ये जो हमारी सिविल सोसाइटीज होती हैं वो इस तरीके की सामाजिक पूंजी का भी निर्माण करती हैं, या यूं कह लीजिए कि सामाजिक पूंजी का निर्माण करने का सबसे बड़ा यंत्र होती है, सबसे बड़ा सहारा होती है। तो एक तरफ तो ये सरकार को बकायदे सजेस्ट करती हैं ये किया जाना चाहिए, दूसरी ओर ये सरकार अपने पद का अपने अधिकार का दुरुपयोग न करे इस रूप में भी काम करती हैं। और नो डाउट फ्रेंड्स कि जो लोग इसमें भाग लेते हैं वो लोग अपने आप में या अपने नागरिकों को या अपने सदस्यों को आप कह लीजिए कि एजुकेट भी करते हैं, उनको लोकतंत्र के लायक बनाते हैं। तो लोकतंत्र की पाठशाला का भी काम ये सिविल सोसाइटीज करती हैं। और एक बहुत बड़ी बात ये है जो आजकल आपको खूब अखबारों में पढ़ने को मिलता होगा, और वो ये कि जो पब्लिक लिटिगेशन, जो जन याचिकाएं दायर की जाती हैं, आप पाएंगे कि जन याचिकाएं दायर करने वालों में एक बहुत बड़ी संख्या सिविल सोसाइटीज की ही होती है। वो जनता के बिहाफ पर जन याचिकाएं दायर करने का काम करती हैं। तो दोस्तों ये मैंने कुछ बातें आपके सामने सिविल सोसाइटी के बारे में रखी हैं, और मैं समझता हूं कि इसके बाद डेफिनेटली सिविल सोसाइटी के बारे में थोड़ी सी एक अतिरिक्त स्पष्टता आपके दिमाग में जरूर आ गई होगी। मैं यहां आपको एक सजेशन और देना चाहूंगा कि अभी एक अच्छा मौका है, ये अच्छा अवसर है कि आपने ये डेली ऑडियो लेक्चर सुन लिया है। सुनने के बाद बेहतर होगा कि आप इसी चैप्टर को एक दो बार पढ़ लीजिए, आपके पास बुक्स होंगी उसमें से पढ़िए, तो आप देखेंगे कि अब जब आप उसी चैप्टर को पढ़ रहे, इससे पहले भी आप पढ़ चुके होंगे, लेकिन अब जब आप उस चैप्टर को पढ़ रहे हैं तो डेफिनेटली आपको मजा भी आएगा और चीजें बड़ी थोड़ी सी अतिरिक्त गहरे रूप में दिखाई भी देंगी। राइट फ्रेंड्स, तो अब इसी के साथ ही मैं आज के इस डेली ऑडियो लेक्चर को फ्रेंड्स यहीं समाप्त करना चाहूंगा। नमस्कार।